और शरीर जो है महान अपवित्र है, इसमें जो पवित्र बुद्धि है इसका नाम अविद्या है, और संसार जो दुख रूप है इसमें जो सुख बुद्धि है इसका नाम अविद्या है। तो अविद्या नाम है अज्ञान का। तो अज्ञान के कारण संसार के वहां सुख प्रतीत होता है। तो इस बातों को समझ कर करके और संसार के पदार्थों के मत जो सुख बुद्धि हो रही है, इसको ये समझना चाहिए कि ये दुख रूप है, संसार है सो दुख रूप है, और साथ साथ के वहां अनित्य, अनित्य होने से असत्य, ये स्वप्नमत है, माया मात्र है, वास्तव की वहां सच्ची जो बात है तो कायम रहे, क्योंकि सिद्धांत है ना सतो विद्यते भावो और ना भावो विद्यते सतः। सतः सत जो है उसका कभी अभाव नहीं होता, और ना भावो विद्यते असत है, ना भावो विद्यते सत, ये बात जो बताई गई है ना कि सत जो वस्तु उसका तो कभी अभाव नहीं होता, और मिथ्या जो वस्तु है उसका अभाव नहीं होता, मन वो कायम नहीं रहती। तो संसार के पदार्थ जो है सो नाशवान है, क्षण भंगुर है, उत्पत्ति विनाशशील है, ये बात समझ करके और उनको अनित्य समझना चाहिए। ये समझ कर भी इसमें वैराग होना चाहिए, दुख रूप समझने से भी वैराग होना चाहिए और अनित्य समझने से भी वैराग होना चाहिए। और वैराग एक बहुत उच्च कोटि की चीज है, सार चीज है। वैराग होने से मन स्वतः ही अपने वश में हो जाता है, और वैराग होने से संसार की तरफ जो वृत्तियां जाती है वो अपने आप हट जाती है, विक्षेप का भी नाश हो जाता है। वैरागवान पुरुषों का संग करने से भी वैराग उत्पन्न होता है, वैराग की बातों को सुनने से भी वैराग उत्पन्न होता है, वैराग की बातों को पढ़ने से भी वैराग उत्पन्न होता है, और एकांत में बैठ करके विचार किया जावे इस विषय के बीच के मां तो विवेक से भी वैराग उत्पन्न होता है। सत वस्तु तो ये, असत वस्तु ये है, इस प्रकार से विवेक हो गए तो ये संसार के सभी पदार्थ जो है सो नाशवान है, तो नाशवान होने से असत है, और परमात्मा जो है सो नित्य और अविनाशी है, ये विचार होने से समझो कि वैराग पूर्ण होता है। विवेक हो विचार को एकांत में बैठ करके रोज हम इसके लिए 5 मिनट या 10 मिनट निकाल लेवे विचार करें तो विचार से ही वैराग उत्पन्न हो जाए, और वैराग के उत्पन्न होने से संसार के विषय भोगों का त्याग है सो एक सहज ही है। वैराग उत्पन्न होने से मन भी एक प्रकार से प्रश्न हो जाता है, तो भगवान कहते हैं कि अभ्यास अनंत कोनते है और वैराग अनंत गृहते, ये मन जो है सो अभ्यास और वैराग के द्वारा प्रश्न हो जाता है। तो वैराग बहुत दामी चीज है, और संसार के विषय भोगों का त्याग जो बिना वैराग होना बहुत ही कठिन है। तो हर एक काम के बीच के वहां समझो कि ये विश्वास होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि वास्तव में जो शास्त्रों में जो बात लिखी है वो सत्य है, महात्मा लोग जो बात कहते हैं वो सत्य है, गीता में जो भगवान ने जो उपदेश दिया वो सत्य है, ये इसके बीच के मां विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही मूल है, विश्वास भी एक सार चीज है, दामी चीज है, और विश्वास के साथ साथ के मां भक्ति हो जावे, समझा, विश्वास के साथ साथ के बीच के मां एक उसमें ये भाव हो जावे कि ये हमारे लिए बहुत ही हितकर चीज है, तो उसका नाम फिर श्रद्धा हो जाता है। श्रद्धा तो ऐसी चीज है, उसके समान कोई चीज है ही नहीं। श्रद्धा की हम लोगों में कमी है, श्रद्धा की कमी के कारण ही हम लोग जो है अग्रसर नहीं होने पाते। इतने दिन हुए और परमात्मा की प्राप्ति से हम लोग जो वंचित है उसका कारण क्या है? प्रधान कारण यह कि श्रद्धा की कमी, विश्वास की कमी। जैसे जो पदार्थ हम प्रत्यक्ष देखते हैं उनके बीच में हमारा विश्वास हो जाता है, तो उसके लिए तत्परता हो जाती है। तो प्रत्यक्ष के बीच के में विश्वास होता है, इसमें कोई श्रद्धा की आवश्यकता नहीं। श्रद्धा की आवश्यकता उसमें है कि जो चीज प्रत्यक्ष तो नहीं है किंतु चीज वास्तव में है उसमें श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती। तो शास्त्र जो कहता है, महात्मा लोग जो कुछ कहते हैं, वो बात एकदम इत्थंभूत है। इस प्रकार का विश्वास होने से ही आगे जाकर के श्रद्धा होती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयोयं पुरुषे योयस् श्रद्धस एव सः। शिव की जो श्रद्धा जो है अंतःकरण के अनुसार होती है, ये पुरुष श्रद्धा मय है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वह पुरुष वैसा ही है, जिसकी जैसी श्रद्धा है उसकी वो ये सुनिष्ठ है, वो स्थिति है, वो उसका स्वरूप है। वो अंतःकरण शुद्ध होने से श्रद्धा होती, तो अंतःकरण की शुद्धि होती है निष्काम कर्म से और ईश्वर के भजन से। ईश्वर का भजन और निष्काम कर्म से श्रद्धा होती है। हम निष्काम भाव से तपस्या करें तो एक प्रकार से अंतःकरण शुद्ध होकर के श्रद्धा होती है। हम निष्काम भाव से परोपकार करें तो अंतःकरण की शुद्धि होकर समझो कि उसके मन श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो हम लोग जो कुछ चेष्टा करते हैं, हमारे सारे कर्म निष्काम भाव से होने चाहिए। किंतु हम लोगों में एक बड़ी बुरी आदत पड़ी हुई है, किसी भी काम को करने के लिए जाते हैं तो प्रथम अपना स्वार्थ देखते हैं, इस काम के करने में हमको क्या मिलेगा, हमको क्या लाभ होगा। इस स्वार्थ के कारण से हम लोगों की बुद्धि मारी जाती है। हम लोगों को तो हर एक काम में ये बात विचारनी चाहिए कि इस काम के करने से संसार को क्या लाभ होगा, इसमें संसार की क्या सेवा होगी, इसमें संसार का क्या हित होगा। जैसे मूर्ख आदमी, स्वार्थी आदमी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को ही देखता रहता है कि इसमें मुझको क्या लाभ होगा, इसमें मुझको क्या लाभ होगा। ये समझो कि अपने पतन का कारण है, ये हमारे समझो कि पतन का कारण है। तो हमको हर एक काम में ये सोचना चाहिए कि इस काम के करने से कि जगत जनार्दन का आपने क्या लाभ होगा, जगत जनार्दन का क्या हित होगा, जगत जनार्दन की क्या सेवा होगी। माने इससे क्या हमारे से सेवा बनेगी। भगवान की सेवा से ही तो मुक्ति होती है, भगवान की सेवा से भगवान की प्राप्ति होती है। दूसरी एक बात और आपको बताई जाती है, हम लोगों में एक बात की बड़ी भारी कमी है कि कोई भी मनुष्य अपनी किसी जिम्मेवारी नहीं समझता। स्वामी जी कल कहते थे, कल हम लोग जो अतर्क गए ना, तो किशनदास जी की बहुत ही आवश्यकता थी वहां, तो मटर वालों ने एक प्रकार से कह दिया कि और जगह नहीं है, आदमी सब हो गए। तो उस समय के बीच के वहां एक प्रकार से वह तो साधु है ही, साधु वृत्ति से उतर गए। किंतु लोगों को यह सोचना था कि इसके लिए हम एक आदमी ठहर जाएं तो एक प्रकार से अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है कि ये जाकर पुस्तक बिक्री के वहां मदद करेगा, जिसमें समझो गीता रामायण आदि का प्रचार होगा, कल्याण का प्रचार होगा। तो ये सोच करके कि दूसरा आदमी यदि एक उसे न मिल जाता तो बहुत ही अच्छी बात थी। अथवा उसके स्थान में वहां जाकर के बोले किशनदास नहीं आए इसलिए उनकी जगह मैं सेवा का काम करूंगा, तो हमारी समझ में उसको ज्यादा लाभ होता। लाभ का मतलब परमात्मा की प्राप्ति के विषय का लाभ, संसारिक लाभ नहीं। परमात्मा की प्राप्ति का लाभ की जो इच्छा है ये भी कहीं हमारे को भुला दिया करती, इस प्रकार से भुला दिया करती है कि हम सत्संग सुनेंगे तो इसमें हमको लाभ होगा। हम ये कहते हैं कि सत्संग तो बरसों से आप सुन रहे हैं, आपको क्या लाभ हुआ। जब आपका सुधार नहीं हुआ, आप में सभ्यता भी नहीं आई, तो एक प्रकार से ऐसे सत्संग से क्या लाभ है। सत्संग सुनकर उसके अनुसार आचरण बनाने चाहिए, सुनते हैं कि भजन करना चाहिए भजन करना चाहिए, और भजन हम करते नहीं तो उस सत्संग से फिर क्या लाभ उठाया हमने। सत्संग में ये बात सुनी जाती है कि सेवा करनी चाहिए, किंतु सेवा की हमारे में जब गंदी नहीं आई तो एक प्रकार से हमारा जन्म तो व्यर्थ ही गया। वैद्य के हम यहाँ जावे और वैद्य कहे कि तुम्हारे जो है थाइसिस की बीमारी है और उसकी यह औषध है, इसका तुम सेवन करो। तुम्हारे गृहिणी की बीमारी है और गृहिणी के लिए एक प्रकार से ये पथ बतलाया है, इसका तुम सेवन करो। और कुपथ का सेवन बिल्कुल मत करो। जिसके मंदाग्नि हो गृहिणी हो उसको कभी घी नहीं खाना, उसके लिए घी ऐसे विष के समान है, हलवा ऐसे विष के समान है, स्त्री सवास करना विष के समान है। ये सुन करके भी वो करता है तो वो मरेगा। तो इसी प्रकार से थी परमात्मा की प्राप्ति के विषय के बीच के वहां जो ये बतलाया जाता है कि दुर्गुण जो है दुराचार है दुर्व्यसन है और निद्रा आलस अधिक है और प्रमाद है, संसार के विषय भोग हैं और पाप है, ये विष के समान है, ये कुपथ है। ये सुनकर यदि उस कुपथ का हम सेवन करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। अरे सुना जाता है कि सद्गुण जो है सद्भाव क्षमा दया शांति समता संतोष सरलता आदि जो उत्तम जो गुण है ये अमृत के समान है, परमात्मा की प्राप्ति में बहुत ही सहायक है। सुना जाता है कि परमात्मा की प्राप्ति के बीच के मां जो निष्काम कर्म है ये बहुत दामी चीज है। निष्काम भाव से यज्ञ करना दान देना तप करना तीर्थ करना व्रत करना उपवास करना लोगों की सेवा करना पूजा करना ये निष्काम भाव से किया जावे तो अमृत के समान है। सुनते हैं और उसको काम में नहीं लावे तो उससे क्या लाभ हो सकता है। सुनते हैं कि भगवान की भक्ति जो है बहुत ही उत्तम दर्जे की चीज है, भगवान का भजन करना ध्यान करना भगवान की पूजा करना भगवान की बातें श्रवण करनी ये बहुत ही दामी चीज है। ये बात एक प्रकार से थी मुक्ति में बहुत सहायक है। इसी तरह से थी परमात्मा के विषय का जो ज्ञान है, परमात्मा के विषय का जो तत्व है, परमात्मा का रहस्य है, ये बहुत दामी चीज है। परमात्मा के गुण प्रभाव की बातों को सुनकर करके उसको धारण करना दामी चीज है, किंतु उसको हम काम में नहीं लावे तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। तो ये सब बातों को अमृत के समान समझ करके इनका सेवन करना चाहिए, ये हमारा समझो कि परम कर्तव्य होना चाहिए। तो हम लोगों के मां ये एक बड़ी त्रुटि है। एक तो ये बड़ी भारी त्रुटि है कि जिस की हम जिम्मेवारी ले ले तो उस काम को हमको तत्परता के साथ में करना चाहिए। उसको तत्परता के साथ में यदि हम निष्काम भाव से करें तो उससे हमारा कल्याण हो जाता है, कल्याण होना सहज है हमारा। तो हम लोग जो कहीं बाहर के वहां जावे तो उस समय के बीच में उसमें भी त्याग करना चाहिए। ये त्याग करना चाहिए कि जिसके देखे वहां विशेष श्रद्धा प्रेम है उसको मौका देना चाहिए, और दूसरे समझो कि ये मनुष्य वहां जाकर के क्या करेगा उसको मौका देना चाहिए। बहुत से ऐसे फालतू आदमी बैठ जाते हैं तो वहां जाकर कोई विशेष लाभ नहीं उठाते और उसके बदले में लाभ उठाने वाले रह जाते हैं। तो उस समय के बीच के वहां समझदार भाइयों को ये विचार करना चाहिए, माताओं को बहनों को भाइयों को, कि इसके ज्यादा अपने चित्त में प्रीति है ज्यादा श्रद्धा है तो इसको ज्यादा लाभ होगा, तो अपने को क्या लाभ है इसको मौका दे दो। तो इस प्रकार का विचार होना चाहिए, त्याग होना चाहिए हरेक काम के बीच के मां, स्वार्थ का त्याग होना चाहिए। स्वार्थ के त्याग से मुक्ति है और स्वार्थ की सिद्धि से पतन है। हम जब ऐसा समझे कि जयदियाल जी के संग से हमारी ये तो मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, और जब ऐसा समझ लिया कि भी इनके सुन से मुक्ति नहीं होगी तब एक प्रकार से थी समझो कि उन जयदियाल में जो श्रद्धा है प्रेम है वो हमारा हट जाएगा। हमको तो ये सोचना चाहिए कि वास्तव के भीतर के बीच के मां मुक्ति का जो स्वार्थ है वो भी हमारे लिए पतन का हेतु हो जाता है। हमको तो ये समझना चाहिए कि अपने कर्तव्य का पालन करना है, मुक्ति से कोई आवश्यकता नहीं। जैसे जप करना, ध्यान करना, क्यों करना? जप और ध्यान इस वास्ते करना है कि जब ध्यान करना हमारा कर्तव्य है, ईश्वर जो है हमारे स्वामी, उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है, इस दृष्टि से करना है। भगवान इसके बदले में हमारे को मुक्ति देंगे, इसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं। हमको तो आवश्यकता यह है कि अपने कर्तव्य का पालन करना है, उसका क्या नतीजा होगा उससे हमारा कोई भी ऐसा संबंध नहीं। आप सोचो कि यदि एक प्रकार से थी, आप हमारा सत्संग करते हैं इसलिए कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो फिर हम आपका सत्संग क्यों करेंगे? जब हम मुक्त हुए हैं तो फिर क्यों हम समझेंगे? हम तो मुक्त हैं, हमको सत्संग करने की क्या जरूरत है? किंतु जो अच्छे जो पुरुष होते हैं, साधक जो होते हैं, सिद्ध होते हैं, वे ये उद्देश्य रखते हैं कि अपना कर्तव्य का पालन करके करते हैं, संसार के वहां भगवान की जो की भक्ति का प्रचार हुए, भगवान की गीता है उसके भावों का प्रचार हुए, तो भगवान खुश होते हैं, भगवान खुश होते हैं, इसलिए हम करते हैं। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु इस प्रकार के करने से हमारी मुक्ति होगी, तो मुक्ति की इच्छा भी एक प्रकार का समझो कि स्वार्थ है। मुक्ति के स्वार्थ के लिए हम विशेष एक प्रकार से मना नहीं करते, उसके वहां रुकावट नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? कि एक प्रकार से उसके आशय से साधन हो जाता है, नहीं तो वास्तव के मां वो निष्काम के तुल है, निष्काम तो है नहीं। मुक्ति की कामना भी काम नहीं है, किंतु इसको लोग समझते नहीं कि भी मुक्ति की कामना का त्याग करके हमारी प्रवृत्ति कैसे होगी। तो प्रवृत्ति कायम रहे इसलिए ये मुक्ति की इच्छा कायम रख दी कि मुक्ति की इच्छा रखो, भगवान की प्राप्ति की इच्छा रखो, कोई हर्ज की बात नहीं। इससे वो बात और अच्छी है कि भगवान के अनुकूल आपने करना अपना कर्तव्य है, ये बात बहुत अच्छी है। अपना कर्तव्य समझ करके अपना साधन करना ये बहुत ज्यादा दामी चीज है। हम लोग अभी कर्तव्य भी नहीं समझते, हम लोगों में कर्तव्य की बात तो और दूर रही, सभ्यता भी नहीं है, मनुष्यता भी नहीं है कि किस प्रकार से मनुष्य को किसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, और वो आवे कैसे? स्वार्थ के त्याग, स्वार्थ का त्याग है नहीं। इस कारण से हम लोग उस परमात्मा की प्राप्ति से थी समझो वंचित हैं। तो ये आपको सार बातें बतलाई, और भी आपको सार बातें बतलाई जाती है कि परमात्मा में जो प्रेम है वो एक नंबर चीज, प्रेम को इतना आदर देना चाहिए मुक्ति से भी बढ़ करके। भगवान में प्रेम हो जावे तो भगवान स्वयं दौड़ करके हमारे पास आवेंगे, हमको भगवान की फिर गर्ज नहीं। यदि भगवान के में हमारा प्रेम है, हमको ये समझना चाहिए कि प्रेम का तत्व और रहस्य भगवान जो जानते हैं, इतने हम लोग कोई भी नहीं जानते। तो वो ज्यादा प्रेम की कदर करता है, तो हमारे में प्रेम होगा तो एक प्रकार से वो ज्यादा कदर करेगा। तो प्रेम बढ़ाना चाहिए। संसार में जो प्रेम है वो तो हानिकर है, पतन करने वाला है, और भगवान में जो प्रेम है वो असली चीज। और दूसरों में भी यदि प्रेम है और वो भगवान के लिए है तो वो भगवान में ही है। हमारा आप लोगों में यदि भगवान के लिए प्रेम है तो वो प्रेम हमारा आप लोगों में नहीं, भगवान में ही है। एक भाई समझो कि रुपयों के लिए मुझ में प्रेम करता है, जयदियाल से प्रेम करेंगे तो उनको रुपये मिलेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि उसका मेरे में प्रेम नहीं है, वो रुपयों में ही प्रेम है, रुपयों के वास्ते ही मुझसे प्रेम करता है। और जिस दिन उनको ये आशा टूट जाएगी कि रुपये तो यहाँ नहीं मिलेंगे, बस उसी दिन उसका प्रेम मुझसे टूट जाएगा। तो उसका मेरे में तो प्रेम है नहीं, है रुपयों के में प्रेम। इसी प्रकार से थी, किसी में हमारा प्रेम है, किसी से हम प्रेम करते हैं भगवान के लिए, तो वो हमारा प्रेम भगवान में, या भगवान सबके वहां विराजमान हो रहे हैं, इस दृष्टि से हम सब से प्रेम करें तो वो हमारा प्रेम भगवान में ही, यह सब भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान ही समझो कि अनेक रूप में प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं, ऐसा हमारा भाव है। और इस भाव को लेकर प्रेम है तो वो प्रेम भी हमारा भगवान में ही, सब में भगवान विराजमान है। इस भाव से हम सबसे प्रेम करें तो भगवान में प्रेम, और सब भगवान को ही स्वरूप है ये समझ करके हम सबसे प्रेम करें तो भगवान में प्रेम। और सबसे प्रेम करने से भगवान खुश होते हैं भगवान, तो ये भी भगवान में ही प्रेम है। और सबसे हम प्रेम करेंगे तो भगवान हमको दर्शन देंगे, तो भगवान के दर्शनों में जो प्रेम है तो वह भी भगवान में प्रेम। तो भगवान का संबंध जोड़ करके हम एक प्रकार से किसी से प्रेम करें तो वो प्रेम उनमें नहीं है, वो भगवान। तो हमको प्रेम बढ़ाना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि भगवान खुश होए। यदि ये बात समझ में आ जाए कि सब ही भगवान को स्वरूप है तो और उत्तम है। किंतु ये बात समझ में नहीं आवे कि भाई ये पशु पक्षी कैसे इसको हम भगवान समझें, हमारे लड़के को हम कैसे भगवान समझें, इस पापी को हम कैसे भगवान समझें, ये बात समझ में नहीं आवे, तो फिर सब में भगवान विराजमान हो रहे हैं, सबकी आत्मा ही परमात्मा है। किसी द्वाल को हम सुख पहुंचा में तो वो तो जड़ है, और किसी प्राणी को हम सुख पहुंचा में तो उसको सुख प्रत्यक्ष में पहुंचता है, तो उसमें भगवान विराजमान हो रहे हैं ये हमारे ध्यान में आ जावे तो एक प्रकार से थी वो अपने भगवान की सेवा है। और सब में भगवान विराजमान हो रहे हैं ये बात समझ में नहीं आ रहे तो फिर ये समझना चाहिए कि सब जो है भगवान की प्रजा है, भगवान की संतान है, भगवान सबके माता पिता है। तो बच्चों की सेवा करने से जैसे माता पिता खुश होते हैं, इस प्रकार से भगवान खुश होते हैं। तो इनके साथ में हम प्रेम क्यों करते हैं? कि भगवान को खुश करने के लिए। इनकी हम सेवा क्यों करते हैं? कि भगवान को खुश करने के लिए। तो ये भी एक प्रकार से थी भगवान की सेवा है। अरे इनसे प्रेम करना भगवान से प्रेम करना है। मोह के कारण में जो प्रेम करना है, आसक्ति को लेकर उनमें जो प्रेम करना है, जैसे माता आपके लड़के में प्रेम करती है, गाय बाछ में प्रेम करती है, स्त्री अपने पति में प्रेम करती है और पति स्त्री में प्रेम करता है, इस प्रकार का जो ये प्रेम है ये तो मोह है। ये तो एक प्रकार से समझो कि आसक्ति है, ये तो आपने पतन करने वाली चीज। तो इसे तो बचना है, ये तो हटाना है, ये तो है ही सबका, स्त्री में, पुत्र में, धन में, रुपयों में, शरीर में, मान बड़ाई प्रतिष्ठा में, जो प्रीति है जिसको हम आसक्ति कहते हैं, राग कहते हैं, ये तो एक भयानक खतरे की चीज है। हमारी आत्मा के पतन के बीच के माँ समझो कि बहुत ही एक अड़चन डालने वाली चीज है। ऐसा समझ करके इसका तो हर एक प्रकार से थी समझो कि विनाश करना इस आसक्ति का, तू मिटाना है इसको, तू ये तो बड़ा भारी दोष है। और वो इसको बड़ा भारी गुण है जो एक प्रकार से सबके माँ परमात्मा को लेकर के जो प्रेम हम करते, तो इस प्रकार से सबसे हम प्रेम करें। आप लोगों को मालूम रहे कि सब परमात्मा के ही समझो कि पुत्र है, संतान है, प्रजा है, ये समझ करके हम प्रेम करें तो वो भी परमात्मा में प्रेम है। उससे बढ़कर के वो है कि परमात्मा सब में विराजमान हो रहे, इसलिए सबकी सेवा ही परमात्मा की सेवा है। और सबसे प्रेम करना इस नाते से परमात्मा से प्रेम करना है कि उस आत्मा रूप से उसमें परमात्मा विराजमान हो रहे, तो और भी उत्तम बात है। और इससे भी उत्तम बात यह है कि सब परमात्मा को स्वरूप है, भगवान ही एक ही अनेक रूप में हुए हैं, अनेक रूप रूप है, विष्णु पर विष्णु भगवान विष्णु ही अनेक रूप में अवस्थित हो रहे हैं। ये समझ करके कि भगवान स्वयं ही एक प्रकार से ये सब रूप में प्रकट हुए, भगवान का संकल्प है, संकल्प रूप से भगवान अनेक रूप में हुए हैं। जैसे रात्रि के समय में स्वप्न के बीच के मां हम ही अनेक रूप में बनते हैं, स्वप्न के संसार क्या चीज है, हम ही बने हैं। इस प्रकार से थी यह सारी संसार है तो भगवान ही बने हैं, भगवान इसके समझो की कारण है, उपादान कारण है। जैसे सोने के गहने हैं तो सोना उसका उपादान कारण है, इस प्रकार से थी समझो कि परमात्मा इसके उपादान कारण है, परमात्मा ही इस रूप के मां दिख रहे हैं। सबको परमात्मा का स्वरूप, पदार्थ मात्र को परमात्मा का स्वरूप, और जो इनकी चेष्टा है वो परमात्मा की लीला, परमात्मा के चरित्र, चेष्टा मात्र को परमात्मा की लीला समझें और वस्तु मात्र को परमात्मा का स्वरूप समझें, तो एक प्रकार से थी बहुत। तो वायु तेज जल पृथ्वी उत्पन्न होते और विनाश होते, उत्पन्न होते और विनाश होते हैं। इसी प्रकार से यह जो संसार है एक प्रकार से परमात्मा से उत्पन्न हुए और विनाश हुए, उत्पन्न और विनाश हुए। तो उत्पत्ति और विनाश होने वाला जो पदार्थ है वो तो एक प्रकार से थी समझो की माइक है, कल्पना मात्र है, असली चीज तो आकाश ही है। इसी प्रकार से यह समझना चाहिए कि असली चीज तो वो परमात्मा ही है, सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। सच्चिदानंद ब्रह्म जो है वो एक प्रकार से इसी प्रकार से थी संसार के रूप में होता है, फिर अपने असली रूप में हो जाता है। तो यदि कहो कि जैसे आकाश तो विकारी है, आकाश जो विकारी हुआ क्योंकि आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, तो इसी प्रकार से क्या ब्रह्म भी ऐसा विकारी है, परमात्मा भी विकारशील है क्या? बोले विकारशील है नहीं, उसमें विकार प्रतीत होता है। ये तो वास्तु के बीच के मां विकार होता है आकाश का, तू और परमात्मा में विकार है नहीं, वो विकार सा प्रतीत होता है। ऐसे समझना चाहिए कि परमात्मा तो निर्विकार ही है, परमात्मा तो निर्विकार ही है, शुद्ध है, इनमें है, ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ऐसा ही है परमात्मा तो। किंतु परमात्मा के बीच में जो विकार उत्पन्न होता सा दिखता है, तो समझाने के लिए ये बात बतलाई जाती है कि ये जो कुछ है तो आपने तो परमात्मा का ही स्वरूप है। वास्तव में स्वरूप इसलिए बतलाया जाता है कि एक बुद्धि हो जावे, सब में ब्रह्म बुद्धि हो जावे, तो फिर ब्रह्म क्या वस्तु है आगे जाकर आप उसको प्राप्त हो जाएगा, आप उसको मालूम हो जाएगी कि ब्रह्म क्या वस्तु है। तो इस वास्ते ये बात समझाई जाती है कि आगे जाकर के वास्तव में जो ब्रह्म का स्वरूप उसको प्राप्ति हो जाती है सब में ब्रह्म बुद्धि होने के प्रभाव से। तो ये एक प्रकार से परमात्मा के मत विकार नहीं है, वो एक प्रकार से विकार सा दिखता है, सब परमात्मा का स्वरूप है। तो ये सार सार बातें कही गई। नारायण नारायण नारायण।